सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सवसाहूणं तिहुवनशिरसे हरये भवभयगभादुनिगदे प्रणम सिद्धे जीवठाण समलिनगुणचूलियं वोच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। और यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यह हम छठी पुस्तक आज से शुरू कर रहे हैं, तो इस पुस्तक का विषय क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। पहले अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा उसका अर्थ उसके नीचे लिखा है उसको देखते हैं। त्रिभुवन शिरसे हरये, त्रिभुवन रूप लोक के शिर पर, त्रिभुवन तीन लोक, हमने पहले देखा था तीन लोक का स्वरूप भी देखा था हमने, कौन कौन से, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक मिलकर तीन लोक यानी पूरा लोक। उसके सिर पर स्थित, इससे पता चला होगा किसकी बात कहेंगे अभी आगे, सिद्धों की, क्योंकि लोकाकाश के अग्रभाग में यानी ऊपर के भाग में स्थित होते ना सिद्ध, तो सिर पर स्थित शेखर स्वरूप यानी शिखर स्वरूप, लोकाकाश के शिखर में जैसे वो विराजमान है। और भवभय गभादु निगदे, भवभय के गर्भ से विनिर्गत, विनिर्गत यानी बाहर निकले हुए, भवरूपी भय से जो पार हो चुके हैं यानी जिनको अभी दोबारा भव धारण नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सिद्धों को प्रणाम करके, प्रणाम यानी उनको नमस्कार करके सिद्धे जीवस्थान नाम के प्रथम खंड की जीवठानस निर्मल गुण वाली चूलिका को कहता हूँ, अमलिन गुण चूलियम वोच्छम, निर्मल गुण वाली चूलिका को कहता हूँ। अब चूलिका किसको कहना, चूलिका लिखा है ना, तो चूलिका हमने वो मेरु पर्वत की भी चूलिका होती है, ऐसा भी सुना है ना, वो तो उसका शिखर है जैसे टोंक जिसको कहते हैं टोंक। अब यहाँ जो चूलिका का अर्थ है 16 नंबर का जो प्रस्तावना का पृष्ठ निकाल पहले, हाँ चूलिका का भी अर्थ है इसे कि जो ग्रंथ में बातें आ चुकी है उसमें आचार्य जैसे टीकाकार आचार्य वो चाहते कि इसका अधिक विश्लेषण करूंगा तो शिष्यों के लिए अच्छा रहेगा, उसमें आए हुए विषय पर भी और कुछ उससे लगता हुआ एक्स्ट्रा विषय भी उसमें कह सकते, उसको कहते हैं चूलिका। जैसे परिशिष्ट आता है वैसे ये चूलिका भी आता है, तो उसका अर्थ यहाँ लिखा है चूलिका किसे कहना। देखो फुटनोट में पहले हम देखते हैं विषय परिचय जिस पृष्ठ पर लिखा है वहाँ फुटनोट में दो संख्या है ना, चूलिया नाम किम यानी चूलिका किसे कहते हैं, इकार संयोग दारेसु सुई दत्थस विशेष यूण परुवणा चूलिया। ये जो पहले अनुयोग द्वार है, पहले जो हम पांच पुस्तकों में पढ़ चुके हैं उन अनुयोग द्वार में सुई दत्थस वहां जो अर्थ बताया है वहां जो प्रकरण, हाँ देखो क्या कहते हैं, पहले जो अनुयोग द्वार आ चुके हैं अनुयोग, जैसे हमने सत प्ररूपणा देखी, संख्या प्ररूपणा देखी है ना, क्षेत्र स्पर्शन वगैरह वगैरह, काल अंतर भाव अल्प बहुत्व, तो उनमें जो जो विषय बता चुके हैं उससे विशेष यून परुणा चूलिया, उसका विशेष रूप से प्ररूपण करना, उसको कहते चूलिका। पहले जो अर्थ बता चुके हैं, जैसे प्रवचन सार में भी अंत में चूलिका कहेंगे, तो जो विषय आ चुका है उसके विशेष कथन करने को चूलिका कहेंगे। दूसरा भी अर्थ ऊपर लिखा, देखिए हम ये विषय परिचय पढ़ेंगे, थोड़ा एक पैराग्राफ है यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, प्रस्तुत ग्रंथ षटखंडागम के प्रथम खंड जीव स्थान का अंतिम भाग है। अभी तक हम जीव स्थान के 5 पुस्तक पढ़ चुके हैं, उसमें पहले 2 पुस्तकों में सत प्ररूपणा देखी, फिर तीसरे पुस्तक में द्रव्य प्ररूपणा यानी संख्या, फिर क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प बहुत भाव और अल्प बहुत भाव और अल्प, ऐसे 8 हमने प्रकार से द्रव्य का या सत जो है उसका स्वरूप देखा, मार्गणा और गुणस्थानों के आधार से। अब कहते हैं ये यहाँ अंतिम भाग है, 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा बताने के पश्चात धवलाकार ने इसको खास लिखा है। धवलाकार कौन है मालूम है? आप मुझे नहीं पूछना। हाँ हाँ, धर्सेन आचार्य। हाँ हाँ, भूत बलि और पुष्प, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? षटखंडागम। तो धवलाकार कौन है? वीरसेन आचार्य। तो धवलाकार ने चूलिका कहा है। धवलाकार ने ये टीकाकार जो आचार्य है, टीका करना यानी जो मूल ग्रंथ है उसका विस्तार से फिर प्ररूपण करना, क्योंकि क्या है मूल ग्रंथ में तो सूत्रों में लिखा है, अभी हमारी समझ में तो सूत्र आते नहीं है, तो उसका अर्थ निकाल कर खोल खोल कर बताना पड़ता है। जैसे कुंदकुंदाचार्य ने समयसार लिखा और 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद्र जब हुए तब तो उन्होंने पाया कि उसको ये मूल गाथाओं को भी समझने वाले बहुत अल्प शिष्य, फिर उसका अर्थ खोल खोल कर उन्होंने टीका के रूप में आत्मख्याति टीका लिखी। अब उसके 1000 वर्ष बाद ऐसी पोजीशन आ गई तो उसको पढ़कर भी उसका अर्थ नहीं समझे, उल्टा पुल्टा अर्थ करे, तो स्वामी जी ने उसमें से अर्थ निकाल कर हमें बताया सरल करके, कितना विस्तार से उस पर प्रवचन हो गए उनके, तो उसको कहते टीका। तो ये टीकाकार मूल ग्रंथ का तो अर्थ करते ही है, कहीं कहीं विषय में विषय के अनुरूप या विषय में बताया हुआ उसको भी दोबारा बता सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ उसके संबंधित ऐसा अन्य विषय भी उसमें बताएंगे, तो उसको चूलिका के रूप में यह छठी पुस्तक लिखी है। पूर्व में कहे हुए अनुयोगों के कुछ विषम स्थलों का जहाँ विशेष विवरण किया जाए उसे चूलिका कहते हैं। ये चूलिका की डेफिनेशन। विषम स्थल यानी कहीं जो समझने में आसान नहीं हो या कहीं शिष्यों में उसमें भ्रांति होने की संभावना हो, या कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब उनके सामने वाले शिष्य उनकी क्या मान्यता है उनको पता था, तो उसको समझाने के लिए वो चूलिका लिखी जाती। यहाँ चूलिका के 9 अवांतर विभाग किए गए। अवांतर विभाग यानी उसके भेद, चूलिका में 9 अधिकार बताएंगे, उसको कहते अवांतर भेद। अवांतर शब्द पहले सुना था? कहाँ सुना था? हाँ हाँ, पंचाशिका में, पंचाध्याय में भी है, प्रवचन सार में भी है। हाँ, क्या सुना था? नहीं मालूम विनोद भाई। अवांतर शब्द, हाँ अवांतर सत्ता और महासत्ता, ऐसे शब्द हमने महासत्य नहीं सामान्य जो एक में गर्भित है, अवांतर ने उसको भेद भेद करके, जैसे अभी उसकी तो चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ अवांतर भेद ने 9 यहाँ अधिकार हो गए, एडिशनल सब डिविजन हम कह सकते हैं, एक्स्ट्रा 9 अवांतर विभाग किए गए हैं, जिनका परिचय इस प्रकार है। इस पुस्तक में आने वाले जो 9 अधिकार है, जो विषय है, एक एक विषय पर कुछ चर्चा है, फिर दूसरा विषय समझाएंगे, फिर तीसरा चूलिका है ना, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अलग विषयों पर उन्होंने चर्चा की है, तो कौन से 9 विषय आने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो अधिकार होगा या चूलिका, प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका। प्रकृति का अर्थ होता है ये कर्म प्रकृति, और समुत्कीर्तन यानी कीर्तन हम कहते हैं कीर्तन करना, यानी उसका व्याख्यान करना, समुत्कीर्तन ने सभी ओर से उसका अच्छी तरह से निरूपण करना। समुत्कीर्तन करो, निरूपण कहो या व्याख्यान कहो, एक ही बात होगी। और चूलिका का अर्थ अभी हमने देखा ही है, तो नीचे देखें, देखो क्षेत्र, काल और अंतर प्ररूपणाओं में, ये जो हम पढ़ चुके हैं, क्षेत्र प्ररूपणा, काल प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा आदि, जो जीव के क्षेत्र व काल संबंधी नाना परिवर्तन बतलाए गए हैं, क्या कहते हैं? हमने क्षेत्र में क्या देखा था, जीव कौन से क्षेत्र में रहता है, वो स्वस्थान उसका जो क्षेत्र के, हाँ स्वस्थान है तो विहारवत स्वस्थान वगैरह देखा, कहाँ तक विहार करके आता है, ऐसे ऐसी बातें देखी ना, मरण की अपेक्षा मारणांतिक समुदाय कहाँ तक होता है, या वैकृत समुदाय करके, तेजस समुदाय करके कहाँ कहाँ जाता है, उसको हमने क्षेत्र कहा था। फिर काल संबंधी परिवर्तन, यानी कितने काल तक है, कितने गुण, कौन से गुणस्थान का काल कितना है, कौन से गति का काल कितना है आदि, जो हमने बातें देखी थी उसमें जो अलग अलग बातें अलग अलग जीवों की अपेक्षा बताई थी, वे विशेष यानी वो जो बातें बनती है वो कर्म बंध के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। ये अलग अलग जीवों में अलग अलग गतियों में जो अलग अलग क्षेत्र बताया है वो क्यों ऐसा होता है, तो उनकी विशिष्ट वहाँ कर्मों का उदय है, उससे वे बातें बनती हैं। या अलग अलग गुणस्थानों का ऐसा ही क्यों स्वरूप है, तो वहाँ विशिष्ट गुणस्थानों में विशिष्ट कर्म बनते हैं, या जो कुछ उनमें यथायोग्य अवस्थाएं बनती हैं। तो प्रकृति यानी कर्म उसका कारण है। वे कर्मबंध कौन से हैं? उन्हीं का व्यवस्थित और पूर्ण निर्देश, निर्देश यानी कथन, क्या कहते हैं? ये कर्मबंध कौन कौन से हैं? यानी कर्म कौन कौन से होते हैं, उसकी मूल प्रकृति क्या है, उनकी उत्तर प्रकृति क्या है। अभी दूसरी बार सुनते हुए डर नहीं लगता, पहली बार सुनते हैं ना तो कुछ डर लगता है। हम तो ये टीवी पर स्टार ट्रैक वगैरह सब देखते हैं, तभी डर नहीं लगता। हाँ ये तो सच्ची बात है, वो तो काल्पनिक है, इसीलिए डर लगता है। वे कर्मबंध कौन से हैं? उन्हीं का यानी इन कर्मबंध संबंधी व्यवस्थित और पूर्ण निर्देश इस चूलिका में किया गया। यहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, ये तो नाम आपने सुने हैं ना तेज, हाँ मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस क्रम से 8 प्रधान कर्मों का स्वरूप बतलाया गया है। प्रधान कर्म ने जो मुख्य, जो हम कहते हैं द्रव्य कर्म, जिसको कहने में आते हैं 8 कर्म, जिनको कहते हैं, जिसको हम मूल प्रकृति भी कहेंगे। और फिर उनकी क्रमशः, उनकी यानी इन कर्मों की यानी मूल प्रकृतियों की क्रमशः, ने जिस ऑर्डर से अभी नाम लिखे ने, कौन से, यहाँ घाती अघाती ऐसा नहीं कहा, पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर वेदनीय, मोहनीय, उसके बाद आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनकी उत्तर प्रकृति कितनी है उसका क्रम बता रहे। अब कह रहे 5, तो 5 किसकी होगी, ज्ञानावरण की, 9 दर्शनावरण की, 2 वेदनीय की, 28 मोहनीय की, 4 आयु की, 42 नाम की। ये 42 क्योंकि हमने तो 93 देखी थी। हाँ नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, ये पिंड और, हाँ बराबर, पिंड और अपिंड उसकी बात करेंगे हम, पिंड प्रकृति कहलाते हैं, जैसे ग्रुप वाली जो है गति नाम कर्म है, तो 4 है गति नाम कर्म, तो खाली गति नाम कर्म कह देना, फिर उसके डिविजन्स बाद में समझना, उसको कहते हैं पिंड प्रकृति, ग्रुप वाली प्रकृति। जाति ने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, 5 भेद है, सबको मिलकर हम जाति नाम कर्म कहेंगे तो वो एक ग्रुप हो गया। ऐसे ग्रुप वाली 14 है और बिना ग्रुप वाली 28 है, यानी सिंगल सिंगल, तो दोनों मिलकर ये जो 42 प्रकृति का है, ये नाम कर्म की। फिर 2 किसकी होगी, गोत्र की, और 5 प्रकृतियां अंतराय कर्म की बतलाई गई है। नाम की 42 प्रकृतियों के भीतर, यानी नाम कर्म की जो 42 उत्तर प्रकृति उसके जो भेद बताए हैं उसमें 14 प्रकृतियां ऐसी है जिनकी पुनः क्रमशः अभी उनका क्रम फिर बताया है। अब ये 14 प्रकृति कौन कौन सी है, तो गति नाम कर्म, उसके चार भेद ये क्रमशः बताए ना, चार किसके है, गति नाम कर्म के चार, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति, नरक गति। फिर जाति के है पांच लिखा ना आगे, जाति नाम कर्म है ने एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुर इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। आगे लिखा है पांच यानी शरीर नाम कर्म, कौन से शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमा, ये शरीर नाम कर्म की बात है, शरीर की नहीं बात चल रही, इन्हीं नाम के नाम कर्म है उसकी बात चल रही। फिर पांच बंधन नाम कर्म कहलाते हैं, उनके नाम यही है, वहां कहेंगे औदारिक बंधन नाम कर्म। पहले हमने क्या कहा था, औदारिक शरीर नाम कर्म, इसको कहेंगे औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक बंधन नाम कर्म आदि। अभी हर एक का जो स्वरूप है वो आगे देखेंगे, अभी तो हम विषय परिचय देख रहे हैं। फिर दोबारा पांच कहा, तो वो संघात, वो भी ऐसा ही औदारिक संघात नाम कर्म, वैक्रियक संघात नाम कर्म। अपनी पंचलब्धि की पुस्तक है ना, उसमें हर एक का नाम और उसका स्वरूप बतलाया है। पहले दो तीन जो चैप्टर्स है उसमें तो ये सभी प्रकृतियों की ही बात की है। अब यहाँ पढ़ेंगे और फिर दोबारा जाके पढ़ेंगे तो एकदम आसान, आपको आप नोट्स भी नहीं निकालेंगे, वहाँ डायरेक्ट पढ़ेंगे तो भी चले। फिर छह यहाँ संस्थान लेना, संस्थान यानी आकार, तो कौन कौन से आकार, हाँ समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक संस्थान। फिर तीन, ये तीन है अंगोपांग के, अंगोपांग नाम कर्म, अंग और उपांग, अंगोपांग कहते उसको। ये अंगोपांग किस किस में है, कौन कौन से शरीरों में आता है अंगोपांग, वैक्रियक, आहारक, औदारिक, ये तीनों को ही अंगोपांग होता है। तेजस में कोई उसकी अंगोपांग, इन्हें अंगोपांग इन्हें किसको कहना, अंग यानी मेन और उपांग यानी जो छोटे छोटे अवयव, जो उंगलियां है, हाथ है, सब जो कुछ है उसको उपांग कहेंगे। तो अंगोपांग तो औदारिक शरीर में होगा, वैक्रिय शरीर के साथ होगा और आहारक वाले को होगा, परंतु तेजस कारमान शरीर को कोई हाथ पैर मस्तक नहीं होगा, उसके उपांग नहीं होंगे। अभी छह है, ये सहनन है, सहनन छह नाम सुने, सहनन वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन वज्र, नाराज, सहनन नाराज, सहनन अर्ध नाराज, सहनन कीलित और असंप्राप्त असरूपाटिका सहनन, ये छह सहनन है। फिर पांच किसके हो गए, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो चार ही हो गए, पांच नहीं, इंद्रिय नाम कर्म की बात है, अश्विन भाई वो चोपड़ी निकाल के देख रहे हैं। देखो इसके बाद नंबर आता है, नहीं वर्ण रस गंध स्पर्श, स्पर्श को पहले नहीं लेना, वर्ण, हाँ वही था आपने बोला भी स्पर्श वगैरह, पर उसको अलग एक एक गिनेंगे तो एक एक होगा, स्पर्श रस गंध ऐसे ना, उसकी पर्याय यानी जैसे पहले लिया है उन्होंने वर्ण, वर्ण की जो पांच पर्याय है, यहाँ वर्ण नाम कर्म की बात है। पांच वर्ण हमें मालूम है ना, काला, नीला, लाल, सफेद वगैरह, तो उसमें उस वर्ण का आगे नाम कर्म ऐसा लिखना, तो वर्ण नाम कर्म के पांच भेद। फिर रसन गंध नाम कर्म के दो भेद, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इस ऑर्डर से लेते हैं। रस नाम कर्म के पांच भेद और स्पर्श नाम कर्म के आठ भेद, हाँ हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, उसके आगे नाम कर्म लिखना हो नहीं तो वो पुद्गल के स्पर्श की पर्याय होगी, यहाँ नाम कर्म के नाम चल रहे हैं। उस नाम कर्म के उदय में वैसे वैसे परमाणु का ग्रहण होता है। अब चार, ये अनुपूर्वी यहाँ आ गई, चार अनुपूर्वी हमने देखा था, विग्रह गति में इस अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है और उसके कारण जीव यहाँ से मरकर अन्य गति में जाता है, तो पूर्व उसका जो आकार है पूर्व भव का आकार वो विग्रह गति में चलता है, ये अनुपूर्वी,
इसी का नाम गत्यानुपूर्वी है,
उसी को गत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी कहो या गत्यानुपूर्वी कहो एक ही बात। वे भी जैसे गति के चार नाम है वैसे गत्यानुपूर्वी के चार नाम है, और विग्रह गति में दोनों का उदय होगा, वो भी मोड़ वाली में सीधी से जाते हैं, वो तो उसी समय वहाँ जो है ना संस्थान नाम कर्म का उदय वहाँ पहुँचने पर होता है, तो वहाँ का नया आकार उसको मिल जाता है। तो जो रुजु गति से यानी मरकर सीधे सिंगल लाइन में चला जाता है उसको बीच में अनुपूर्वी का उदय नहीं होता, क्योंकि उसको वो कारमान का आयोग भी नहीं है, वो आहारक भी नहीं है, वो अलग अलग बातें उसमें समझना। तो अनुपूर्वी का उदय उसी का होगा जो मोड़ सहित जाता है, मोड़ के पहले पहले अनुपूर्वी का उदय है, और बाद में जो समय उस वहाँ पहुँचने का है तब वहाँ का संस्थान नाम कर्म का उदय उसका चालू हो जाता है, वहाँ का आकार उसका, वैसे वो पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके उस आकार में ढाल देते हैं। अब दो रह गए पिंड प्रकृति में से दो, ये विहायोगति, विहायोगति यानी चाल जिसको कहते ना चलना, तो कौन चलते हैं, कौन कौन से जीवों को विहायोगति होगी, हाँ दो इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को विहायोगति नाम कर्म का उदय होता है, एक इंद्रियों को नहीं होता। भले हम कहेंगे वो हवा हिल रही है यहाँ से वहाँ बह रही है, पानी बह रहा है, अग्नि की ज्वाला ऊपर जा रही है, वो विहायोगति नहीं है उनकी। इस प्रकार 65 उत्तर प्रकृतियां हो गई है, अभी जो हमने गिनी ना ये 14 पिंड प्रकृतियों में टोटल उसकी 65 हो गई, तो 42 में से 14 की टोटल वो 65 हो गई, और रिमेनिंग जो 28 है 65 और 28, अतएव नाम कर्म के कुल भेद 65 + 28 93 हुए, जिनसे अभी उन्होंने सभी कर्मों की उत्तर प्रकृतियां गिनाई, ज्ञानावरण से लेकर ये सभी आठों कर्मों की समस्त उत्तर प्रकृतियां 148 हुई हैं। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 वगैरह वगैरह ये सब मिलकर 148 प्रकृतियां हुई। इसमें 46 सूत्र है, ये जो पहला विषय है प्रकृति समुत्कीर्तन, उसमें 46 सूत्र है जिनका विषय आग्रायणीय पूर्व की, ये कहाँ से विषय लिया है उसका ओरिजिन बताए। तो आग्रायणी नाम का जो पूर्व है ये पूर्व किसे कहने मालूम है, 12वें अंग में पूर्व नाम का एक जो कुछ अधिकार है उसमें 14 पूर्व होते हैं, हाँ ये 14 पूर्व में से आग्रायणी नाम का जो पूर्व है उसके चयन लब्धि के अंतर्गत ये पूरा चार्ट हमने प्रथम भाग में देखा था। महाकर्म प्रकृति प्रावृत के 7वें अधिकार बंधन के बंध विधान नामक विभागांतर्गत समुत्कीर्तना अधिकार से लिया गया है, ये तो उसका ओरिजिन बताया है, क्योंकि ये जो ये क्यों बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो ओरिजिनल जो आगम है उसके साथ इसका संबंध बताने के लिए, ये किसी आचार्य ने अपनी रचना नहीं की है, मूल आचार्यों की परंपरा से जो बात चली आ रही है वहीं से ये बात उठाई है, ये बात उन्होंने बताई। अब आगे का विषय हम आगे आगे देखेंगे, पूरा ही पुस्तक का विषय देख लेंगे तो कन्फ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, अभी हम मूल पुस्तक शुरू करते हैं। यहाँ भी पहले सूत्र में तो यही बताने वाले हैं कि कौन सी उस प्रकृति होती है, क्या है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रश्न वहां उठाए हैं, यानी इस चूलिका का यहाँ विषय बताया है। पहला सूत्र पढ़ते हम, कदी काओ पयड़ियो बंदी केवड़ी कालठिदी एही कम्मे ही सम्मतम लब्भदी वा न लब्भदी, क्या कहते हैं, अरे कब और कितनी या कौन सी प्रकृतियां बनती है, पयड़ी यानी प्रकृति, कब और कौन से ने कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां बनती है, और कितनी कितनी बनती है ये इसका हिसाब उसमें होगा। केवली केवड़ी कालठिदिये ही, कितने काल की स्थिति वाले कर्मों के द्वारा वो सम्यक्त्व प्राप्त होता है या नहीं होता। केवचिरेण कालेन वा कदी भाये वा करे दी मिच्छत्तम, यानी कितने काल में वो मिथ्यात्व वगैरह होता है या वो उसमें से दूसरी मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है। कदी भाये वा करे दी व सामना वा खवणा वा केसु व खेतेसु कस्स व मूले केवड़ियम वा दंसन मोहम कम्मम खवेंतस्स चारित्तम वा संपूर्णम परिवज्जन्तस्स। ये पूरे का अर्थ हम नीचे देखते हैं, यहाँ कौन सा जीव कब उपशम या क्षपणा करता है, किसके सानिध्य में करता है वगैरह वगैरह, ये बातें दर्शन मोह की जो क्षपणा है उसके बारे में नीचे उसका संपूर्ण अर्थ लिखा है। देखो सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाला मिथ्यादृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है, कितने काल स्थिति वाले कर्मों के तथा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, यानी कितने स्थिति वाले कर्म बांधता है और सम्यक्त्व कैसे कैसे क्या प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है, कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है। ये मिथ्यात्व कर्म में से और दो प्रकृतियां तैयार होती है ना, और किन किन क्षेत्र में तथा किसके पास में कितने दर्शन मोहनीय कर्मों को क्षपण करने वाले जीव के किन किन क्षेत्र में, जैसे कर्म भूमिका मनुष्य ही वो क्षपणा करेगा आदि आदि बातें, तो क्षेत्र भी बताएंगे और किसके पास में, तो तीर्थंकर के पाद मूल में वगैरह जो बातें हैं उसके जो नियम है वो भी बताएंगे। क्षपणा करना यानी क्षय करना, दर्शन मोहनियों का क्षय करना यानी जो क्षायिक सम्य दृष्टि बनना। दर्शन मोहनी का उदय है तब मिथ्यात्व है, जब जीव को सम्यक तो प्राप्त होता है तो दर्शन मोहनी कर्म का हम तो अभाव कहेंगे परंतु वो तो सत्ता में अंदर पड़ा हुआ है, उसका उदय सम्यक प्रकृति रूप से होता है और वेदक सम्यक तो चलता रहता है। वो बातें आएगी, उपशम होता है कि क्षोपशम होता है कि क्षय होता है, उसकी चर्चा आगे आएगी। क्षपण करने वाले खिपावे खपावे जो कुछ हो, हाँ उसके जीव के और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाले जीव के दो बातें बताई, दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला जीव और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाला है ने चारित्र मोहनी का भी क्षय करने वाला जीव। मोहनी कर्म की उपशामना तथा क्षपणा होती है यानी संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाला दो प्रकार से, चारित्र मोहनी की उपशामना करना वाला यानी उपशम श्रेणी वाला या ग्यारहवें गुणस्थान वाला संपूर्ण रूप से, और क्षपणा करने वाला बारहवें में जो आया है तो उसके उपशमना या क्षपणा होती है। अब शंकाकार पूछता है ये तो कितने काल में होती है क्या होता है, ऐसा प्रश्नात्मक ही सूत्र है, सूत्र में तो सभी प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर किसी का नहीं दिया है, उत्तर तो आगे के सूत्रों में आएंगे। तो शंकाकार पूछता है जीव स्थान नामक प्रथम खंड संबंधी आठों अनुयोग द्वारों के समाप्त हो जाने पर, आठ अनुयोग द्वार, अनुयोग द्वार ने व्याख्यान करने के जो आठ अलग अलग अपेक्षाओं से व्याख्यान करते हैं किया है उसको कहते हैं अनुयोग द्वार। हमने अकॉर्डिंगली अनु यानी अकॉर्डिंगली, तो सर्वज्ञ भगवान के जो कथन है उनकी जो दिव्य ध्वनि है उसके अनुसार जो कथन किया है उसको अनुयोग कहा था। वो आठ प्रकार से, उसमें हमने सबसे पहले सत देखा, फिर संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन अलग अलग आठ अपेक्षाओं से जो कथन किया है यह जीव संबंधी कथन चल रहा है। तो जीवों का जीवों संबंधी कथन गुणस्थानों में और मार्गणास्थानों में उनकी अपेक्षा से उन्होंने किया और उसमें ये आठ अपेक्षाएं बताई। आठों ही ये जो हमने देखे थे विषय उसके बारे में जीवों की जो है प्ररूपणा की तो उसमें 8 अपेक्षाएं लगाकर गुणस्थानों में और मार्गणस्थानों में उसकी चर्चा की। अभी तक ये 5 पुस्तकों के द्वारा हमने ये 8 अनुयोग द्वार देखे, बराबर। तो ये तो समाप्त हो गए, 8 अपेक्षाओं से तो कथन समाप्त हुआ, यानी जीव स्थान पूरा होना चाहिए था यहाँ पर। यह चूलिका नामक अधिकार किस लिए आया है, ये शंकाकार की शंका है। आपने तो 8 अनुयोगों के द्वारा जीव का पूरा ही विवरण बता दिया, तो जीव स्थान पूरा होना चाहिए था, तो ये चूलिका क्यों बनाई है, ऐसा कहते हैं। उसका समाधान, पूर्वोक्त 8 अनुयोग द्वारों के विषम स्थलों के विवरण के लिए। विषम स्थल ने कोई थोड़ा हम डिफिकल्ट हम कहते हैं उसको, जहाँ जहाँ कोई डिफिकल्ट विषय है जो समझ में आने कठिन है, या वहाँ लिखा है फिर भी आचार्य चाहते कि इसको दोबारा और इस पर गौर करना ठीक है, हाँ, और इसको अधिक दोबारा जानो या अच्छी तरह जानो, उसके लिए चूलिका नामक अधिकार आया है। फिर शंका, यहाँ पर शंकाकर कहता है, चूलिका नामक अधिकार 8 अनुयोग द्वारों से प्ररूपित ही अर्थ को प्ररूपित करता है अथवा अन्य अर्थ को। वो पूछ रहा है, चूलिका में जो विषय आप बताने वाले हैं, वो 8 अनुयोग द्वारों में जो विषय बता चुके हैं उसी विषय को बताने वाले हैं, कोई अन्य विषय को बताने वाले हैं? अभी उसमें ऑप्शन देगा और वो रूल आउट करना चाहता है आचार्य की बात। यदि उसी अर्थ को प्ररूपित करता है तो पुनरुक्त दोष आता है। यदि वो आचार्य को कहता है, यदि आप कहेंगे जो 8 अनुयोग द्वारों में बताया है उसी बात को फिर दोहराएंगे, तो कहेंगे पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त ने रिपीटिशन का वो वहाँ दोष आएगा। ये दोष है, रिपीटेडली बात वही वही बताना, ये सूत्र के लिए दोष है। इसलिए कहते हैं यदि आप वही विषय बताते हो तो पुनरुक्त दोष आ जाएगा। द्वितीय पक्ष में वह चतुर्दश ने 14 जीव समास प्रतिबद्ध अर्थ का प्ररूपण करता है अथवा चतुर्दश जीव समास अप्रतिबद्ध अर्थ का। अभी वो दूसरा पक्ष पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न उसका क्या है, 14 जीव समास यानी गुणस्थान, तो 14 गुणस्थानों के प्रतिबद्ध यानी उसके संबंध वाला, उसी अर्थ का यानी उसी विषय का प्ररूपण करने वाला है, क्या चतुर्दश जीव समास को छोड़कर अन्य विषय का प्रतिपादन करने वाला है? आप जो यहाँ बताने वाले हैं चूलिका में, क्या ये 14 गुणस्थानों संबंधित विषय होगा कि उनको छोड़कर कोई अन्य विषय होगा? प्रथम विकल्प के मानने पर यदि आप कहेंगे कि 14 जीव समास को प्ररूपण करने के लिए ये लिखा है, लिखा ना कि, तो यदि आप ऐसा कहेंगे कि 14 जीव समास के संबंध में ही हम प्ररूपण करेंगे, तो कहते हैं 14 जीव समासों के प्ररूपण करने के लिए उस विषय में ये 8 ही अनुयोग द्वार जानने योग्य है। पहले ये सूत्र आया था, क्या आया था, कि 14 जीव समासों को जानने के लिए ये 8 ही अनुयोग द्वार ये जानने योग्य है, उससे अधिक नहीं, यानी उसके अधिक की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो 8 ही जानने योग्य है, ऐसा पहले आचार्य ने पहले भाग में कहा था। इस प्रकार के इस सूत्र के अवधारण रूप एवकार पद के विफलता प्राप्ति होती है। 8 ही लगाए ना, ही संस्कृत में ही को एव कहते हैं, अष्ट एव ऐसा कहेंगे, तो कहते एवकार यानी ही जो शब्द लगाया है कि 8 ही है, कम ज्यादा नहीं है, ये जो उन्होंने एवकार पद का उदाहरण तो बताया है ऐसा हमने जाना है, उसके विफलता प्राप्त होती है, वो यूजलेस हो जाता है। पहले जो सूत्र कहा था कि 8 ही अनुयोगों के द्वारा ये 14 जीव समासों को हम जानते हैं, तो वहाँ ही करके एव करके जो बताया था तो वो यूजलेस हो गया सूत्र, क्योंकि आप और एक्स्ट्रा यहाँ चूली का भी बता रहे हो। प्रश्नकार का प्रश्न कहाँ है, ये आचार्य उनके कहीं ना कहीं वो खोट दिखाना चाहते, ज और मराठी में च आठच हिंदी में ही विफलता प्राप्त थी, क्योंकि चतुर्दश जीव समास में प्रतिबद्ध अर्थ का प्ररूपण करने वाला चूलिका सन्नित नवमा अनुयोग द्वारा पाया है। क्या कहते हैं आप, तो आठ ही अनुयोग द्वार कहते हैं और यहाँ अपने चूलिका नामक नौवा अनुयोग द्वार बनाया है, ऐसा वो आचार्यों को समझा रहे हैं। तो ये उसका प्रश्न करने में वो सामने वाले को शंका के रूप में वो कहते हैं कि आपका ये करना ठीक नहीं, पहले आपने ही बताया था कि आठ अनुयोग द्वारों में ही विषय पूर्ण होता है और फिर आप ही यहाँ नौवा चूलिका नाम का अनुयोग बना रहे। द्वितीय पक्ष के मानने पर ये पाया है के बाद वहां दंड करके वाक्य पूरा करना, अभी द्वितीय पक्ष में कौन क्या माना था उन्हें, उसने प्रश्न पूछा था कि चतुर्दश जीव समास के संबंध में विषय है कि उस संबंध में नहीं है, यहां लिखा ना चौथी लाइन में, अथवा चतुर्दश जीव समास अप्रतिबद्ध अर्थ का अर्थ है ना विषय, अभी यहाँ विषय की बात चल रही, तो क्या आप चूलिका में 14 जीव समासों के जो उसमें जो अर्थ बताया है उसके संबंध से रहित ऐसा कोई नया विषय लेने वाले हो, ये दूसरा पक्ष हुआ उसका। उसने ऑप्शन दो पूछे कि ऐसा आप कर रहे इसलिए ये आठ अनुयोग में जो बताया है ऐसा 14 जीव समासों के संबंध वाला विषय बताने वाले हो कि बिना संबंध वाला, तो संबंध वाला कहते हो तो ये नौवा अनुयोग हो जाता है और बिना संबंध वाला हो तो वो फिर अभी उसका प्रश्न पूरा करेगा। तो द्वितीय पक्ष के मानने पर चूलिका नामक अधिकार जीवस्थान से पृथकभूत हो जाएगा। क्या कहते हैं, जीवस्थान तो उसे ही कहा था कि 14 जीव समास के संबंध में जो जिसमें विषय बताया था, यदि आप कह रहे हैं कि 14 जीव समासों से कोई अलग विषय यहाँ बताएंगे तो ये चूलिका जो है वो जीवस्थान नाम का अधिकार नहीं हो सकता, इसको हम जीवस्थान पुस्तक नहीं कह सकते क्योंकि वो जीव समास जो है 14 उसको छोड़कर अन्य विषय को बताने वाला है, हमें तो यहाँ जीव के संबंध ही जो विषय है चल रहा है अपना उसी को बताना है, क्योंकि चतुर्दश जीव समास प्रतिबद्ध यानी 14 जीव समास को या गुणस्थानों से जो संबंधित अर्थों को यानी विषय को नहीं कहने वाले अधिकार के यानी अधिकार को अपनी भाषा में जीवस्थान इस संज्ञा का विरोध है, उसको हम जीवस्थान नहीं कह सकते। जीवस्थान हम उसी को कहेंगे जो 14 जीव समासों के बारे में कुछ बताएगा, 14 जीव समासों को छोड़कर अन्य विषयों की बात करने वाले अधिकार को उस चैप्टर को हम जीवस्थान नहीं कहेंगे, ऐसे प्रश्नकार का ये बड़ा चौड़े उसकी शंका है। अब आचार्य उसका समाधान करते हैं, यहाँ पर उक्त शंका का परिहार किया जाता है यानी उसको रूल आउट करते उसका समाधान करते। न तो प्रथम पक्ष में दिया गया पुनरुक्त दोष आता है, पहले उन्होंने बताया था आठ अनुयोग द्वारे में जो विषय बताया है वही फिर बताने वाले हो तो पुनरुक्त दोष आएगा, तो उसको कहते वो दोष नहीं आता, क्योंकि आठों ही अनुयोग द्वारों से नहीं प्ररूपण किए गए तथा वहां पर कहे गए अर्थ के निश्चय उत्पन्न करने वाले उसमें जो बात नहीं बताई थी वो बताए जा रहे हुए और जो बताई गई थी उसका निश्चय यानी खास दृढ़ता लाने के लिए और जीवस्थान से कथनचित पृथकभूत यानी किसी अपेक्षा से पृथकभूत तथा पृथकभूत यानी अलग तथा उन आठों अनुयोग द्वारों से ही सूचित अर्थ का उन आठों अनुयोग द्वारों के द्वारा जो अर्थ सूचित किया था जो विषय बताया था उसी को सूचित करने वाला उसी अर्थ को बताने वाला, विषय तो वही है विषय अन्य नहीं है उसी अर्थ को बताने वाला, परंतु वहाँ कोई विषय वहाँ बताया नहीं था या उसका अधिक निर्णय करने के लिए या फिर दोबारा कह रहे इस चूलिका नामक अधिकार में प्ररूपण किया है, ये चूलिका लिखने का उन्होंने प्रयोजन बताया। द्वितीय पक्ष के अंतर्गत अभी जो दूसरा प्रश्न उसने प्रस्तुत किया था उसमें जो उसने पूछा था, प्रथम पक्ष में बतलाई गई एवकार पद की विफलता भी नहीं आती है। वहाँ उसने कहा था ना आठ ही अनुयोग द्वार जानने योग्य है, ही लगाया था, तो कहते वो विफल हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं वो ऐसा बेकार का नहीं जाएगा, क्योंकि चूलिका का आठों अनुयोग द्वारों में अंतर्भाव हो जाता है। चूलिका में जो बताया है वो आठ अनुयोग द्वारों का ही विषय है, तो आठ अनुयोग द्वारों में ही चूलिका आ जाती है, उसको नौवा अनुयोग द्वार नहीं कह सकते हम, क्योंकि उसमें उन्हीं बातों का उन्हीं विषयों का यहाँ फिर विवरण है, विवेचन है। शंकाकार पूछता है कि चूलिका का आठों अनुयोग द्वारों में, वो ध हो गया उसको द्व करना, द्वारों में अंतर्भाव कैसे होता है, उसका समाधान, क्योंकि चूलिका नामक अधिकार आठों अनुयोग द्वारों से सूचित अर्थ का प्ररूपण करता है। आठ अनुयोग द्वारों में जो विषय बतलाया है वही विषय चूलिका के अंतर्गत बताने वाले हैं, इसलिए वो आठ अनुयोग द्वारों में ही उसका अंतर्भूत होता है ने, इंक्लूडेड, हाँ उसी में वो गर्भित है ऐसा कहेंगे। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, क्षेत्र प्ररूपणा काल प्ररूपणा, ये क्षेत्र प्ररूपणा के बाद कौमा देना, क्षेत्र प्ररूपणा काल प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा, एक्चुअली उसके बाद कौमा नहीं चाहिए, ठीक है, इन तीन अनुयोग द्वारों से गति आगति नाम की चूलिका सूचित की गई है। अब ये चूलिका में आने वाले जो विषय है उसकी बात है, गति आगति जो चूलिका है वो उसके संबंध से है। हाँ? देखो जरा हम यहाँ विषय सूची देखते हैं, हाँ? पेज नंबर, खाली हम उसके हेडिंग्स देखेंगे, 38 पेज विषय सूची लिखा है जहाँ पहले प्रस्तावना वाला विषय परिचय वाला, जहाँ इंडेक्स है 38 पेज पर, विषय सूची मिला आपको, देखो पहला ही पहला प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका पहला अधिकार, ये तो अभी उसका स्वरूप हमने देखा। फिर उसके पश्चात अगले पृष्ठ पर स्थान समुत्कीर्तन चूलिका, स्थान वो तो उसमें क्या विषय आने वाला है वो बाद में देखेंगे हम, कौन से गुणस्थान में कितने बंधे योग्य प्रकृतियां वगैरह उसके स्थान कहेंगे, वो स्थान समुत्कीर्तन। उसके बाद प्रथम महादंडक चूलिका, ये तीन महादंडक है, प्रथम महादंडक, द्वितीय महादंडक, तृतीय महादंडक। उसके बाद उत्कृष्ट स्थिति चूलिका, कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बताने वाली बात। अब उसके आगे 42 पृष्ठ ये 41 पृष्ठ पर जघन्य स्थिति चूलिका, कर्मों की जघन्य स्थिति, अभी कौन होगा किसके होगा कौन से गुणस्थान में आदि आदि जो बातें हैं जघन्य स्थिति के संबंध में। उसके बाद सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका, सम्यक तो उत्पन्न होता है उस संबंधी यहाँ विशेष चर्चा है। उसके बाद अगले पृष्ठ पर देखो, अगले ने 45 पर है ना, हाँ गति आगति चूलिका, यानी कौन कहाँ उत्पन्न होता है कौन कहाँ से मरकर कहाँ जाता है आदि आदि जो बातें हैं गति आगति में, तो उसमें क्षेत्र संबंधी भी बात आते हैं काल संबंधी भी आदि जो बातें हैं, यहाँ लिखा ना अभी हम ये गति आगति की, ऐसे ये नौ अधिकार उसमें आने वाले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सब, हाँ पूरा ही प्रकरण। तो क्षेत्र प्ररूपणा काल प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा उसके द्वारा गति आगति, हाँ गमन आगमन ऐसा, अभी उसमें ही अलग अलग बातें आएगी उसके अंदर, प्रवेश और निर्गमन जैसे गुणस्थानों में आना जाना या किसी गति में आना जाना वो सब उसमें आ जाएगा। हाँ देखो सूचित की गई, अभी चौथे पेज चौथे लाइन में, समाधान के चौथी लाइन, और वह गति आगति चूलिका भी प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन इन दो अधिकारों को सूचित करती है, क्योंकि कौन सी प्रकृतियां हैं, कहाँ बनती है, उनका बंद कब रुक जाता है, कौन सी गतियों में कौन सा बंद है, आदि आदि जो बातें, उसके अकॉर्डिंगली वो गति आगति होती है। हमें ऐसा लगता है ये कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं, जब प्रकृति के संबंध में और स्थान उसके पता चलेगा, कौन से गुण स्थान में कौन कौन सा बंद होता है या कौन कौन सा रुक जाता है, तो इतना पता चले तो वो कौन सा जीव कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो आगे की बात एकदम सीधी है। अश्विन वे हंसते हैं, सूचित करती, क्योंकि कर्म बंध के बिना सात प्रकार के परिवर्तनों में परिभ्रमण हो नहीं सकता। अभी हमने तो अभी तक पांच परिवर्तन देखे थे, कौन कौन से, हाँ, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। अभी यहाँ तो सात लिए हैं, इसके नाम तो नहीं लिखे, परंतु कर्म और नो कर्म ऐसे दो भेद हमने देखे थे। हाँ, उसमें दो आए, द्रव्य परिवर्तन में दो प्रकार देखे थे, कर्म और नो कर्म, कर्म द्रव्य परिवर्तन और नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। वैसे क्षेत्र के संबंध में, हाँ, स्वस्थान, स्वक्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन, तो सात हो जाएंगे। ख्याल है ना, हम तो पांच गिनते हैं, परंतु वहाँ द्रव्य परिवर्तन में कर्म और नौकर्म ऐसे दो लेना, और क्षेत्र में भी स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र। स्वक्षेत्र में जीव की अवगाहना के भेदों को लिया था, और पर क्षेत्र में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर उत्पन्न होने की बात की थी हमने, ये हमने डिटेल में पहले देखा था, परिवर्तन की बात देखी थी ना, पांच परिवर्तन की। तो सात प्रकार के परिवर्तनों में परिभ्रमण हो नहीं सकता, यानी ये जो परिभ्रमण का कारण क्या है, तो कर्म बंध है। तो वो तो बात प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन में जानेंगे, तो ये गति आगति का भी उसी के आधार से उसका कथन होगा। भले उन्होंने चैप्टर अलग बनाया, परंतु उसका बेस, उसका आधार तो ये कर्म बंध ही है, जो वो पहले दो अधिकारों में बताने वाले हैं। ख्याल है ना, इसका भले इन्होंने दो अलग, ये नौ अलग चैप्टर बनाए, परंतु उसका बेस क्या है उसको समझा रहे। प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन के द्वारा कर्मों की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति नाम की दो चूलिकाएं सूचित की गई है। अभी उसमें ही जो कर्मबंध होता है, उन्हीं में कौन से कर्मों की और कौन सा जीव उत्कृष्ट स्थिति बांधता है, स्थिति यानी स्थिति बंध, जब जीव स्थिति बंध करता है तो कषाय के कारण उसमें, कषाय ने वो मिथ्या तो कषाय सब कषाय में गर्भित है, तो कषाय के द्वारा वहाँ स्थिति अनुभाग पड़ता है, और योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। तो ये कौन सी उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है या कब पड़ती है, कौन से गुणस्थान में होती है और कब जघन्य स्थिति होती है, ये जो बातें हैं, ये जो दो बातें कही ना, ये दो चूलिकाएं सूचित कही, क्योंकि सकषाय जीव के, क्या कहा, सकषाय जीव, कषाय वाला जीव, सकषाय जीव के स्थिति बंध के बिना प्रकृति बंध नहीं हो सकता। यानी जब जब जीव के कषाय है, तब तब उनके चारों ही प्रकार का बंध है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो सकषाय जीव के स्थिति बंध होगा ही, उसके बिना उसको कर्म का बंध हुआ ऐसा नहीं कह सकते। अकषाय होने पर वहां स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं है, तो वहां एकमात्र वो प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति बंधी और उसके इतने परमाणु आए, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा कब होगा, हाँ, क्या अकेले तेरहवे में होगा? अकषाय कौन है, ग्यारहवा, बारहवा और तेरहवा। चौदहवे को लेना कि नहीं, हाँ, वह बंद ही नहीं है। अब आगे काल प्ररूपणा में कहे गए देशों न अर्धपुद्गल परिवर्तन, देशों ने कुछ कम, ये देशों न अर्धपुद्गल परिवर्तन किसके लिए कहा था, हाँ, एक बार सम्यक्त होने के बाद कोई जीव अधिक से अधिक इस संसार में रहे और फिर तो गारंटी से मोक्ष जाए ही जाए, तो कहते उसको देशो न अर्धपुद्गल परिवर्तन काल। ये हम कहने के लिए अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहेंगे। तो ऐसा होगा ना, किसी जीव को सम्यक तो प्राप्त होने के बाद उसी भव में मोक्ष जाएगा, कोई कोई दो चार आठ भव करके मोक्ष जाएगा, कोई भले करोड़ों भव करके मोक्ष जाएगा, परंतु अधिक से अधिक वो घूमेगा इस संसार में, तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन से उससे अधिक काल नहीं रखेगा, वो निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा ही। इसलिए कहते हैं प्रथम ने प्रथम जिसको सम्यक तो प्राप्त होता है पहली बार, वो कितने परिवर्तन पहले होगा किसी जीव को, मेरा प्रश्न देखो, मेरा क्या प्रश्न है, किसी पर्टिकुलर जीव को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त होना है इस समय पर, ये वर्तमान काल हम यहाँ गिना रहे हैं, मान लेते हैं उसके दो द्रव्य परावर्तन बाकी अभी, तो क्या उसको सम्यक तो होगा, नहीं हो सकता। हाँ तो पहले में पहले कब हो सकता है, तो किसी जीव को होगा तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन पहले ही सम्यक तो हो सकता है, उसके पहले नहीं, अधिक से अधिक काल की बात है ना। ऐसा नहीं कि सबको इतने पहले होता है, किसी को 10 साल पहले ही हो गया, मोक्ष प्राप्ति होनी है 10 साल बाद, अभी 10 साल पहले उसको सम्यक तो भी हो गया, फिर उसने क्षयिक सम्यक तो भी प्राप्त किया, उसी भाव में वो मुनि भी हो गया और मोक्ष भी चला गया, ऐसा भी होगा ना, नहीं होगा। देख हम देखते हैं कोई जीव निगोद से निकला, अब भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की बात करेंगे।
देखो अभी सीनियर सिटीजन के लिए 9% ब्याज दे रहे हैं, तो मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए की है, तो आप कम कितना रख सकते हो, हाँ 1 रुपया भी रख सकते हो। वैसा यहाँ मैक्सिमम काल है अर्ध पुद्गल परावर्तन, किसी को थोड़ा काल में भी हो सकता है।
नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन थोड़ा कम ज्यादा है, जो पुद्गल परावर्तन का थोड़ा, जैसे जघन्य उत्कृष्ट उसमें हमने देखा था थोड़ा भेद है, परंतु वो दोनों ही अनंत काल है, अनंत काल है, फिर भी उससे पहले तो किसी को सम्यक तो नहीं होगा। ये पहले में पहले सम्यक उत्पत्ति की योग्यता कब होगी, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले किसी के, वो योग्यता है इसलिए उसको सम्यक तो होगा, ये ऐसी बात नहीं, उसको ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कहीं भी सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उसका मोक्ष यहाँ पर गारंटी के, उसका सम्यक तो का उत्पत्ति का काल भी गारंटेडली वही उसी समय होगा, परंतु किसी का अर्लीएस्ट होगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले होगा, पहले में पहले होने की बात, ये मैक्सिमम उसका मोक्ष होने के पहले मैक्सिमम अंतर, सम्यक तो होने के बाद मोक्ष कब होगा, ये जो मिथ्यात्व में जाके रख रहेगा उसके लिए है, उसका सम्यक तो बना रहे तो इतना लंबा काल तो होता है नहीं, ख्याल है। हाँ
यहाँ देशों शब्द का अर्थ देश यानी पार्शियल पार्ट ऑफ इट, और उससे उन यानी कम, तो देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन यानी पुद्गल परावर्तन में कुछ काल कम। ऐसे तो हम जनरली जैसा हम कहते हैं कि भाई सुदर्शन मेरु कितना है, तो 1 लाख योजन है, लेकिन डिटेल में देखा जाए तो 1,40,000 योजन है, वैसे यहाँ कितना टाइम बाकी रहेगा, तो देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन, और हम ऐसा जनरली कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बाकी है तो भी कोई गलत नहीं है, ये अधिक डिटेल में बात की है।
देखो काल प्ररूपणा में कहे, जब हमने काल प्ररूपणा देखी थी तो वहां देशों अर्ध पुद्गल परिवर्तन इस व्यस्टन से प्रथम सम्यक्त्व का ग्रहण सूचित किया गया है, प्रथम सम्यक्त्व ने पहली बार जब सम्यक्त्व हुआ था उसका ग्रहण वहां सूचित किया है। यदि ऐसा न माना जाए तो देशों अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र मिथ्यात्व की स्थिति का होना संभव नहीं है। मिथ्यात्व की स्थिति यानी अधिक से अधिक मिथ्यात्व का लंबा काल, वो अनादि वाला मिथ्यात्व नहीं लेना, सादी मिथ्यादृष्टि लेना, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट है और जिसको एंड पॉइंट है, उसको कहेंगे मिथ्यात्व की स्थिति। यानी सम्यक तो प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व में आया। अब कोई जीव अधिक से अधिक ऐसे मिथ्यात्व में कितने काल तक रह सकता है, तो उसकी लिमिट है अर्धपुद्गल परिवर्तन। उसके बाद वो निश्चित रूप से सम्यक्त्व को भी प्राप्त करेगा, क्षयिक समय दृष्टि होगा, मोक्ष चला जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति, काल में देखा था ना उत्कृष्ट काल कौन सा, सादी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल, मिथ्यात्व संबंधी उत्कृष्ट काल कितना है, तो देशों न कहा। क्योंकि देशों ने कुछ कम क्यों कहा, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन में तो वो मोक्ष जाने वाला है, सम्यक तो प्राप्त करने वाला अंतर्मूर्त छोड़ दिया, और बाद में मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में जाएगा, उपशम समय दृष्टि होगा, फिर वो वेदक होगा, फिर क्षायिक होगा, फिर मुनि होगा, वगैरह वगैरह पूरे आगे के अंतर्मूर्त। इसलिए देशों ने इन्हें कुछ कम कहा। हाँ, देशों में कुछ भी हो सकता है, पर हम अधिक से अधिक स्थिति किसी के होगी तो कुछ अंतर्मूर्त पश्चात वो मोक्ष चला जाएगा। वो बात हमने काल प्ररूपणा में पहले देखी थी। अब उस प्रथम सम्यक ग्रहण के द्वारा भी तीन महादंडक, प्रथम सम्यक ग्रहण करने के योग्य क्षेत्र, इंद्रिय, अब ये जो तीन महादंड के सम्यक तो प्राप्त करने संबंधी जो कुछ नियम है वो वहां बताए। तो कहां होगा प्रथम सम्यक तो ग्रहण करने के योग्य क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में होगा, तो चारों गति में होता है। प्रथम उपशम सम्यक तो चारों गति वाले जीवों को होगा, तो कौन से इंद्रिय वालों को होगा, क्षेत्र के बाद वो कौमा देना, हाँ सही नहीं, पंचेंद्रियों को ही होगा। फिर त्रिविध करण की प्राप्ति, तीन प्रकार के करण कौन से, अधक करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये त्रिकरण कहते हैं या त्रिविध करण कहते हैं, उसकी प्राप्ति। पर्याप्तक पना, जैसे पर्याप्त जीवों को ही होता है, अपर्याप्तों को नहीं वगैरह। प्रथमोपशम सम्यक प्राप्ति संबंधी जो हमने नियम देखे थे पहले में, पहले चारों गति वाला भव्य होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त तो होना चाहिए, मनुष्य और तिर्यंचो में गर्भज होना चाहिए, आदि आदि बातें हमने देखी थी बहुत सारी, है ना। तो ये बातें यहाँ बताएंगे। स्थिति खंड और अनुभाग खंड, यानी स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात आदि बातें, ये तो वहां आएगी, जो तीन दंडकों का चैप्टर है उसमें ये बातें आने वाली है। यहाँ तो उसका विषय सूचित कर रहे हैं, वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, कैसा होता है, वो सब बातें बताएंगे। आदिक सूचित किए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार सम्यक्त को प्राप्त किया है ऐसे जीवों को अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से ऊपर संसार का अभाव हो जाता है। अभी उसका संसार कितना है, मैक्सिमम किसी का है तो अर्धपुद्गल परावर्तन, उससे ज्यादा नहीं। उस मोक्ष के द्वारा भी दर्शन मुनि और चारित्र मुनि कर्म के क्षपण का विधान, यानी ये दर्शन मुनि की क्षपणा कैसे होती है उसका विधान करेंगे, चारित्र मुनि की क्षपणा कैसे होती है उसका क्या प्रोसेस है, जो हमारा क्षपणासार का विषय था, लब्धिसार क्षपणासार में हम पढ़े थे इसको। उसके योग्य क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में क्षपणा होती है, तो उसका प्रारंभ मनुष्य गति वाला जीव ही करता है, वो भी कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, केवली शुद्ध केवली की या तीर्थंकरों के पाद मूल में करता है, आदि आदि जो बातें ना, उसकी कंडीशंस यानी वो निमित्त करता था, वो स्वयं की योग्यता से। अभी शाम को बात चल रही ना अपनी, तीर्थंकरों के सान्निध्य में वो क्षायिक समय दृष्टि होगा, परंतु वो तीर्थंकर नहीं कराएंगे उसको, फिर भी ये जो कोई अनुकूल जो परिस्थितियां उसको बताते हैं, उसका गति यदि मनुष्य गति में होते उसका कारण और स्थितियां सूचित की गई है, उसके संबंध में जो कुछ डिटेल्स है वो वहां बताएंगे। इन सब बातों का उन आठ अनुयोग द्वारों में निर्णय नहीं किया गया है, ये बातें तो वहां बतानी नहीं बताई थी, क्योंकि वहां उन सब का निर्णय करने पर शिष्यों के बुद्धि व्याकुलता का प्रसंग प्राप्त होता है। क्या कहते हैं अश्विन भाई का हंसी आती है, वो कहते तब तो पांच भाग पढ़ता ही नहीं, पहले ही भाग जाता शिष्य, छठे पुस्तक तक नहीं आता, बुद्धि व्याकुलता हो जाती है। नहीं वो तो क्या, अरे ये अपने समझ के बाहर ऐसे करके डर कर छोड़ देता जी, व्याकुलता हो जाती है। द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, अभी उसके जो शंकाकार की शंका का परिहार उन्होंने बताया ना, तो द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है, क्योंकि चूलिका को जीव स्थान से पृथकभूत नहीं माना गया है, वो पृथकभूत वहां ग रह गया, पृथकभूत हुआ है, पृथकभूत करना, उसको पृथकभूत है ना, अलग आधा ग रह गया ना वह पृथकभूत। हाँ उसमें जो डिटेल्स है या उसके कुछ टिप्पणियां हैं, जैसे हमने कर्मकांड वगैरह में भी वो चूली का अधिकार उसमें भी देखा था, पंचभाव चूली का वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें देखी थी वहां भी, भागहार पंचभागहार चूली का देखे उसमें भी। अभी उसने जो माना था कि चूली का वो जीव स्थान से पृथकभूत हो जाएगा, क्योंकि उसमें 14 जीव समासों का वर्णन नहीं है, तो वो भी बात नहीं बनती। वह चूलिका भी सामान्य विवक्षा से एक प्रकार की है, सामान्य विवक्षा से हम कहते ना उसका सब्जेक्ट है सच, एक प्रकार की है, और फिर उसमें भेद अलग अलग उसमें चैप्टर के नाम कहेंगे तो हम कहेंगे वो पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा अनेक प्रकार की है। जैसे हम कहते हैं कर्म सामान्य से एक है, और फिर उसके भेद करेंगे तो 8 प्रकार के हैं, उसके और भेद करेंगे तो 148 हो गए, और भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे, उसको कहते हैं पर्यायार्थिक नैस। देखो सामान्य विवक्षा से एक प्रकार की है और पर्यायार्थिक नैस से 9 प्रकार की है। ये जो हमने 9 सब्जेक्ट्स देखे चूलिका के, वह इस प्रकार है। कितनी प्रकृतियां बांधता है इस पद में प्रकृति समुत्कीर्तन और स्थान समुत्कीर्तन नामक 2 चूलिकाएं आ गई हैं। अभी जो हमने पहला सूत्र देखा था ना, देखो जरा कदी पगड़ियो बंद दी, ऐसा कुछ नहीं, कदी और काओ 2 प्रश्न पूछे थे, कदी काओ पयड़ियो बंद दी, कदी पयड़ियो बंद दी और काओ पयड़ियो बंद दी। हाँ देखो कितनी प्रकृतियां बांधता है उसमें 2 चूलिका आ गई कि प्रकृति समुत्कीर्तन, यानी प्रकृति के बारे में समुत्कीर्तन, यानी उसका विवेचन व्याख्यान, और स्थान समुत्कीर्तन यानी कौन से गुण स्थान में कितने बांधेंगे वो उसको स्थान कहेंगे, कहाँ कितनी प्रकृतियां बांधता है उसके जो अलग अलग भेद है ना उसको स्थान कहेंगे। ये 2 चूलिका आ गई। किन प्रकृतियों को बांधता है, पहले तो क्या पूछा कितनी बांधता है, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव कितनी प्रकृतियां बांधता है, तो सभी तो नहीं बांधेगा क्योंकि मिथ्या तो अवस्था में ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना आहारकों का होता है, आहारिक दिक का, तो कहेंगे अनेक जीवों की अपेक्षा इतनी बांधता है, ख्याल है ना। तो ये कितनी का हो गया, वो तो संख्या बताई, कौन कौन सी बांधता है मैं ये बाती है। तो किन प्रकृतियों का बांधता है इस पद में प्रथम द्वितीय और तृतीय दंडक नाम वाली 3 चूलिकाएं अवस्थित हैं। तो यहाँ हम देखेंगे वो कहाँ कौन सी बनती है, कहाँ कौन से बंध का विच्छेद होता है, बंध विच्छित्ति, तो उसकी अपेक्षा कौन से गुणस्थान वालों को कौन कौन सी प्रकृति बंधेगी, कौन से गति वालों को कौन सी प्रकृतियाँ बंधेगी। जैसे देवगति में ये एक सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आदि प्रकृतियाँ नहीं बंधेगी, नरक गति आदि वो उसको नहीं बंधेगी, देव वालों को तो देवगति भी नहीं बंधेगी, उसको तो मनुष्य तीर्यंश है, यह आयु की बात, वो आयु बंधेगी उसको। इस तरह से कौन सी प्रकृति बनती है उसका उत्तर उसमें आ जाएगा। अब आगे प्रश्न क्या पूछा था, केवड़ी कालट्ठी दिए हाँ, तो कितने काल स्थिति वाले कर्मों के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता है। इस पद में जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति नाम की 2 चूलिकाएं अवस्थित है, ये जो नियम बताया है कि कितनी कर्मों की स्थिति कितनी होने पर सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, जैसे हमने प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व में देखा था, मोहनीय की जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ी है उत्कृष्ट अंदर, या जिसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हो रहा है, ऐसे जीव को प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसे देखा था, तो उसका कुछ थोड़ा कम हो जाता है। और ये भी देखा था बाद में कि प्रायोगिक लब्धि में आने के बाद उसके तो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। ये जो प्रकरण है वो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जो स्थिति बताएंगे यहाँ, उसमें से ये भाग निकलता है कंसर्न विद डेट। अब अगला प्रश्न क्या पूछा था उन्होंने, ये पहले सूत्र में से ही जो अलग अलग प्रश्न है वो कौन कौन सी चूलिका को रेफर्ड है, यानी उससे संबंधित है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। कितने काल के द्वारा मिथ्यात्व कर्म को कितने भाग रूप करता है, ये प्रश्न आया था ना, और किन क्षेत्रों में तथा किसके पास में कितने दर्शन मोहनीय कर्मों को क्षपण करने वाले, ये पूरा प्रश्न जो हमने पढ़ा था लंबा है, और संपूर्ण चारित्र को प्राप्त होने वाले जीव के मोहनीय कर्म की उपशमना तथा क्षपणा होती है। इन पदों में आठवीं चूलिका आई है, आठवीं चूलिका हमने कौन से देखी थी, सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका, उसमें फिर वो सम्यक्तोत्पत्ति यानी क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति ऐसा लेंगे, और चारित्र की उत्पत्ति में भी उपशम चारित्र की उत्पत्ति और क्षायिक चारित्र की उत्पत्ति, वो सब उसमें आ जाएगा। तथा वा संपूर्णम खवेन्तस चारित्रम वा संपूर्णम, इस वाक्य में आए हुए वा शब्द में गति आगति नाम की नवमी चूलिका विवक्षित है। पहला प्रश्नात्मक सूत्र है उसमें ये नौ के नौ चूलिका कैसे आती है उसका उन्होंने संबंध करके बताया। प्रश्न के उत्तर में ही ये नौ चूलिकाएं बनी, पहले ही सूत्र में प्रश्न पूछा तो उसमें ये आगे आने वाली नौ चूलिकाएं बनती हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त सर्व चूलिकाएं नौ होती हैं, अथवा अवांतर भेद की अपेक्षाएं चूलिकाएं अनेक प्रकार की हैं। अब उसमें भी और भेद करते जाओ तो बहुत से भेद बन सकते हैं। अब इन नौ चूलिकाओं के अर्थ प्ररूपण के लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं, ऊपर दूसरा नंबर का सूत्र, उसके अर्थ में वो बोल्ड होने चाहिए थे मगर उन्होंने सादा प्रिंट किया है, पहले ऊपर का सूत्र पढ़ते हैं। कदी काओ पगड़ियो बंधदिति जम पदम तस्स विहासा, कितनी और किन प्रकृतियों को बांधता है, यह जो पूर्व सूत्र पठित पद है, पद यानी वाक्य, पहले सूत्र में बहुत बड़ा सूत्र हमने देखा तो उसमें बहुत से वाक्य थे, तो पहला ही वाक्य था कितनी और कौन सी प्रकृतियों को बांधता है, लिखा था ना उन्होंने कदी काओ पगड़ियो बंधदी, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो ये जो पूर्व सूत्र पठित, पूर्व सूत्र में बताया हुआ ये जो पद है यानी ये जो वाक्य है उसका व्याख्यान किया जाता है। अब ये जो अलग अलग प्रश्न वहाँ पर पूछे थे उसमें से अलग एक एक करके उसका व्याख्यान करेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे ना, अब इन सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो दूसरे सूत्र में बता रहे ये जो पहला वाक्य है अभी इसका हम व्याख्यान करेंगे। शंका, जिस प्रकार से उद्देश होता है उसी प्रकार से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार से उद्देश्य ने हमारा जो एम है बताने का प्रयोजन जो है उसी प्रकार निर्देश ने कथन होता है, ये न्याय है। ये पहले हमने बहुत बार इसको देखा है कि कथन कैसे होता है, तो जो आचार्य को जो चीज़ बतानी है उसके अनुसार उसका कथन होगा। इस न्याय के अनुसार पहले उद्देश्य किए गए पदार्थ का पहले ही निर्देश होता है, यह बात जानी जाती है, अतएव यह सूत्र आरंभ नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, यह दूसरा सूत्र बताने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पहले सूत्र में जो कुछ 8-10 बातें पूछी उन्होंने, 8-9 बातें, तो जो पहली बात पूछी है उसका पहले उत्तर आने वाला है, ये तो जाहिर है। तो ये सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्या ना? ये सूत्र बेकार का क्यों बनाया, कि किस कितनी और कौन सी होती, ये जो पूछा था वो तो पहले सूत्र में भी पूछ लिया था, तो फिर दोबारा ऐसा बताने की क्या आवश्यकता थी। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पद में ये चूलिकाएं अवस्थित है और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए, बात को लिखा है, बात का चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए, तथा जिस प्रकार से उद्देश्य होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है, इस न्याय के अस्तित्व प्ररूपण के लिए इस सूत्र का आरंभ किया है। क्या कहना चाहते हैं? ये जरा पहले जो भाषा है ना, अटपटी है, थोड़ा हम लाइन तक चले तब तक, ये तो पहले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐसा लगता है कि अपने समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं, पहले सूत्र में ये जो जितने सारे पद बताए, जितने वाक्य बताए, तो वहाँ वो सूत्र वहाँ क्यों कहा था कि यह पद इस चूलिका के लिए है, ऐसे वहाँ उन्होंने बहुत सारा बता दिया। अब दूसरे सूत्र में दोबारा एक पद लेके उसका व्याख्यान करूँगा, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं अभी हमारा स्टार्टिंग में अपना प्रयोजन क्या है, अभी अपना विषय क्या है, ये बताने के लिए दोबारा वहाँ उन्होंने कहा कि जो अपना उद्देश्य है वैसा ही कथन होता है, वैसा ही निर्देश होता है, इस बात का अस्तित्व बताने के लिए ये फिर दोबारा उन्होंने दूसरा सूत्र बताया। क्योंकि दूसरे सूत्र के द्वारा कहते हैं अभी एक इसी एक विषय पर बात चलेगी। पहले सूत्र में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं स्टार्ट है, अभी उसमें से एक प्रश्न लिया है, कितनी और कौन सी प्रकृतियां बनती है, उसका विवेचन अब चलेगा, ये बताने के लिए उस सूत्र को अलग बताएं। अभी उसे तम जम पदम तस्य विहासा, विहासा विहासा ने विभाषा, विविध प्रकार के भाषण अर्थात कथन करने को विभाषा कहते हैं। सूत्र में आए ना विहासा यानी विभाषा, विभाषा प्ररूपणा निरूपणा और व्याख्यान, ये सब एकार्थवाचक नाम है, उन सब का अर्थ सेम है। अब यहाँ कहते हैं तीसरे सूत्र में, इदानिम पगड़ी समुख कित्तनम कस्सामु, यानी अब प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करेंगे, यानी अब आचार्य कहते हैं अब मैं प्रकृति समुद कीर्तन करूंगा, ऊपर है ना, पगड़ी समुख कित्तनम कस्सामो, कस्सामो ने मैं कर रहा हूँ, प्रकृति समुत्कीर्तन करता हूँ, यानी प्रकृतियों का स्वरूप का निरूपण करता हूँ। समुत्कीर्तन यानी स्वरूप का निरूपण करना, स्वरूप का व्याख्यान करना, स्वरूप बताना। नीचे आता क्या ना, अब प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करेंगे, प्रकृतियों के समुत्कीर्तन को प्रकृति समुत्कीर्तन कहते हैं। अपने ये चैप्टर का अधिकार का नाम ही है प्रकृति समुत्कीर्तन, जिसका के अर्थ है प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करना, ये उसका अर्थ होता है, प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण करना यानी प्रकृतियों का स्वरूप बताना, उसी को उन्होंने नाम दिया प्रकृति समुत्कीर्तन। ये कर्म की ही प्रकृति है ना, हमेशा प्रकृति का अर्थ कर्म प्रकृति ही लेना, क्योंकि कर्म शब्द डालते तो भी वो पूछते फिर वो भाव कर्म है क्या, द्रव्य कर्म है क्या, नव कर्म है क्या, तो फिर पूछेंगे प्रकृति शब्द क्यों नहीं डाला। एक कर्म प्रकृति की बात है यार, देखो क्या कहते हैं, ये पहले से प्रकृति ही उसको इन शरखंडागम में हर जगह उसको प्रकृति कहा है, क्योंकि अभी हमने नहीं मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति, मूल कर्म उत्तर कर्म भी नहीं कहा उसको, मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति। देखो इस समय अर्थात आठों प्ररूपणाओं के पश्चात, अब करेंगे अर्थात प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की चूलिका को कहेंगे। इदानीम लिखा है ना, इदानीम मैंने अब करूंगा, अब करूंगे ने आठ अनुयोग द्वार समाप्त हो गए हैं, अब चूलिका में मैं करूंगा ऐसा कह रहे। कस्सामो ऊपर शब्द आया कस्सामो, उसी का अर्थ है भनिस्सामो यानी मैं कहता हूँ। ये दोनों शब्द एकार्थक है यानी मैं बताने वाला हूँ या मैं बताऊंगा या निरूपण करूंगा, ये जो बात है उसका अर्थ बता दिया। अब शंका, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन को ही किस लिए कहते हैं, प्रकृतियों के स्वरूप ही पहले क्यों बता रहे हैं, तो पहले स्थिति क्यों नहीं कही, पहले कहाँ बनती है क्यों नहीं कहा। तो कहेंगे कि प्रकृतियों क्या है कौन सी है उसके नाम ही पता नहीं तो क्या कहेंगे तो पूछेगी फिर किसकी बात करते हैं। नहीं, क्योंकि प्रकृतियों के अज्ञात होने पर यानी जिसे प्रकृति क्या है कितनी है कौन सी है मालूम नहीं है, उनके अज्ञात होने पर स्थान समुत्कीर्तन आदि के ज्ञान का कोई उपाय नहीं है। प्रकृतियाँ कौन सी है मालूम नहीं है तो कौन सी कहाँ बनती है और कहाँ नहीं बनती है, कौन सी का बंध कहाँ रुकता है, ये कैसे कहेंगे। तो प्रकृति बताए बिना उसके स्थान कैसे बता सकते हैं, ये बात यहाँ बताए। दूसरी बात यह है कि अवयवी के अज्ञात रहने पर अवयव नहीं जाने जा सकते। अवयवी यानी जो मेन जो कुछ है जिसके हम भाग कर रहे हैं भेद कर रहे हैं, तो मूल बात ही मालूम नहीं है तो उसके भेदों को कैसे जानेंगे। क्योंकि अन्यत्र वैसा नहीं पाया जाता, अन्यत्र भी ऐसे पहले तो मेन चीज को बताएंगे फिर उसके जो कुछ पार्ट्स है या कुछ उसके विशेषताएं उसको बताएंगे, इसलिए प्रकृति समुत्कीर्तन को ही पहले कहते हैं। वह प्रकृति समुत्कीर्तन भी, प्रकृति समुत्कीर्तन का अर्थ याद है ना, प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण। अब ये जब प्रकृतियों के स्वरूप का निरूपण यानी कथन जो है वो भी दो प्रकार से करेंगे, वह भी मूल प्रकृति समुत्कीर्तन यानी मूल प्रकृतियों का स्वरूप बताएंगे और उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तन यानी उसके भेद। मूल यानी मेन जो आठ हम द्रव्य कर्म कहते हैं उसको मूल प्रकृति कहते हैं, उनके जो भेद है जैसे ज्ञानावरण ये मूल प्रकृति हुई, फिर मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण आदि जो पांच है वो उत्तर प्रकृतियां कहलाएंगी। तो मूल प्रकृति समुत्कीर्तन यानी मूल प्रकृतियों का कथन और उत्तर प्रकृति समुत्कीर्तन यानी उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप का कथन, उसके भेद से दो प्रकार का है यानी इनमें दोनों का ही कथन आएगा। पहले मूल प्रकृतियां बताएंगे फिर उनके भेदों को भी बताएंगे। अपने अंतर्गत यानी अपने अंदर समस्त भेदों का संग्रह करने वाली यानी जिसमें सभी भेद गर्भित है ऐसी और द्रव्यार्थिक नए निबंधनक प्रकृति का नाम मूल प्रकृति है। जैसे ज्ञानावरण, ये तो परिभाषा लंबी चौड़ी और ऐसी हमें लगती है कुछ समझ में नहीं आता, हाँ वही बताते हैं। जैसे ज्ञानावरण ये मूल प्रकृति है तो ज्ञानावरण प्रकृति में उसके पांचों ही भेद गर्भित हैं। क्या लिखा ना, अंतर्गत समस्त भेदों का संग्रह करने वाली ज्ञानावरण प्रकृति अपने सभी भेदों का संग्रह करती है यानी उसमें सभी भेद उसके अंदर ही गर्भित है, उसके अंदर लीन है ऐसा कहेंगे। और क्या है वो, द्रव्यार्थिक नए निबंधनक, द्रव्यार्थिक नए वाली वजह है क्योंकि ज्ञानावरण कहना ये द्रव्यार्थिक नए है, सबका कॉमन सामान्य से हमने सामान्य का कथन उसको कहेंगे द्रव्यार्थिक नए निबंधनक।
द्रव्यार्थिक नए भेद करके नहीं कथन करता है इसलिए द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से उसको कहा गया है, ऐसा जो कोई होगा उसको मूल प्रकृति कहेंगे और जो उसके भेद करके कहेगा उसको पर्यार्थिक नए निबंधक कहेंगे।
यानी सामान्य कथन समझो, सामान्य से हम उसको ज्ञानावरण कहेंगे और विशेष भेद करेंगे तो उसके तो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण वगैरह होंगे भेद, तो उसको हम कहेंगे पर्यार्थिक नए निबंधनक। इसीलिए कहा मैंने ये जो पहले जो शुरू में जो पार्ट है ना ये उसका जो विवेचन किया है वो हमें लगता है कि ऐसे कोई गहरे शब्द है जाड़े जाड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे, सामान्य से उसको हम मूल प्रकृति कहेंगे जब उसके विशेष करके भेद करके समझाएंगे तो उसको हम उत्तर प्रकृति कहेंगे। पृथक पृथक अवयव वाली तथा पर्यायतिक नए निमित्तक प्रकृति को उत्तर प्रकृति कहते हैं। ये पर्यायतिक नए ने भेद करने वाले नए को पर्यायतिक नए कहते हैं। तो भेद करके जो कथन करता है तो ऐसी जो प्रकृतियां हैं पृथक पृथक अवयव यानी उसके अलग अलग भेद अवयव ने भेद अभी उसके तो उन भेदों को तथा पर्यायार्थिक नए निमित्तक यानी उसके कारण पर्यायार्थिक नए के द्वारा जिसमें भेद बताया जाता है उसको उत्तर प्रकृति कहते हैं। फिर शंका, इन दोनों भेदों में से मूल प्रकृति समुत्कीर्तन पहले किस लिए कहते हैं? अभी ये बच्चों जैसे प्रश्न है ना, इंटेलिजेंट है। अच्छा बहुत अच्छा। तो कहते हैं ये पहले मूल प्रकृतियों को क्यों बताए, पहले उत्तर प्रकृति को बताना ना। तो समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि समस्त उत्तर प्रकृतियों का संग्रह करने वाली मूल प्रकृति के प्ररूपण किए जाने पर ही उत्तर प्रकृतियों की प्ररूपणा बन सकती है। हमको भेद कहने हैं तो ये किसके भेद है ये तो पहले बताना चाहिए ना। हमने बच्चों के नाम गिनना शुरू किए, आप कहेंगे ये किसके बच्चे तो पहले कहो। अब ये अगला सूत्र कहेंगे, तम जहां वह प्रकृति समुत्कीर्तन किस प्रकार है, ये प्रश्नात्मक सूत्र पूछा है। शंका, यह पृच्छा सूत्र किस लिए कहते हैं? शंकाकार ने उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया, यह प्रश्नात्मक सूत्र क्यों बनाया? उसका समाधान, सूत्रकर्ता की प्रमाणता के प्ररूपण द्वारा सूत्र की प्रमाणता का निरूपण करने के लिए यह पृच्छा सूत्र कहा है। पहले भाग में भी हमने ऐसा ही देखा था कि मिथ्या दृष्टि कितने हैं तो अनंत है, ऐसा कहा। तो हम पूछा था यह प्रश्न क्यों पूछा, डायरेक्ट लिख देते कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंत है, तो वह कहते नहीं, वो तो तीर्थंकरों से ऐसा प्रश्न पूछा गया और उनकी दिव्य ध्वनि में उनका उत्तर आया है, इसलिए ये प्रमाण है क्योंकि भगवान की वाणी में आया हुआ है, तो ये प्रमाणता। तो कहते यहाँ सूत्रकर्ता की प्रमाणता के प्ररूपण द्वारा ये प्रमाणता को बताता है, प्रश्न करके उसका उत्तर अभी आगे देंगे तो ये प्रमाणता को बताता है, उसकी जो प्रमाणता सिद्ध होती है इसके द्वारा, इसलिए यहाँ प्रश्नात्मक पूछा है। अब कहते उसके उत्तर में, नानावरणीयम ज्ञानावरणीय कर्म है। तो प्रकृति समुत्कीर्तन में पहले मूल प्रकृतियों के नाम बताएंगे, तो कहते ज्ञानावरणीय कर्म है, ये सूत्र बता दिया। अब कहते ज्ञान अवबोध अवगम और परिच्छेद, ये सबका अर्थ एक ही है, ये सब एकार्थवाचक नाम है, एकार्थवाचक यानी उन सबका अर्थ समान है। उस ज्ञान को हाँ अवबोध भी यानी ज्ञान, अवबोध अवगम परिच्छेद, ये परिच्छित्ति वगैरह शब्द आया है हमने, ये बुद्धि शब्द भी कैसा आज हमने, बोध उससे वो बुद्धि शब्द तैयार हुआ। उस ज्ञान को जो आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है, ज्ञान को आवरण करने वाला, ये शब्द कैसे तैयार हुआ, उसकी व्युत्पत्ति यानी शब्द कैसे डेवलप हुआ, तो ज्ञान को आवरण करने वाला है वह ज्ञानावरणीय। शंका, ज्ञानावरण नाम के स्थान पर ज्ञान विनाशक ऐसा नाम क्यों नहीं कहा? तो उसका उत्तर नहीं, क्योंकि
ज्ञान का नाश नहीं हो रहा
है। हाँ, नाश नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन का विनाश नहीं होता, ये बहुत महत्व की बात है। ज्ञान और दर्शन तो जीव का लक्षण है, और लक्षण तो उसे ही कहते हैं जो सर्वत्र और सर्वदा पाया जाता है। यदि लक्षण का ही नाश हो जाए तो वो पदार्थ भी नहीं रहेगा वहां, क्या रहे? तो तो जीव का जो लक्षण है ज्ञान दर्शन, उसका कभी विनाश नहीं होता। यदि ज्ञान और दर्शन का विनाश हो जाए तो जीव का भी विनाश हो जाएगा, लक्षण का नाश होगा तो लक्ष्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि लक्षण से रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता। लक्ष्य यानी जिसका लक्षण बांधते हैं उसको लक्ष्य कहते हैं, यानी जीव लक्ष्य है और ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है। शंका, ज्ञान का विनाश नहीं होने पर सभी जीवों के ज्ञान का अस्तित्व प्राप्त होता है, ये कहता है। यदि आप ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता ऐसा मानेंगे तो सभी जीवों को ज्ञान रहेगा, तो वे तो वही चाहते ना, हम तो वही चाहते, सभी जीवों को ज्ञान तो रहता ही है, भले वो निगोद में भी क्यों न चला जाए, वहां भी वो कम से कम जो पर्याय ज्ञान कहते हैं या अक्षर का अनंत वा भाग ज्ञान कहते हैं वो वहां विद्यमान है। यानी कोई भी जीव ज्ञान रही जैसे पुद्गल जैसा जड़ कभी नहीं होता, उसके पर्याय में हमेशा जानन क्रिया तो चलेगी ही। उसका समाधान, ज्ञान का विनाश नहीं होने पर यदि सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है, यानी ये बात तो इष्ट ही है। अथवा अक्षर का अनंत वा भाग ज्ञान नित्य उद्घाटित अर्थात आवरण रहित रहता है। पहले सूत्र है ये जो ज्ञान, कम से कम ज्ञान, उसको कहते हैं अक्षर का अनंत वा भाग। ये अक्षर यानी एबीसीडी वाला अक्षर नहीं, जिसको अभी मैंने पर्याय नाम का ज्ञान कहा था। मिनिमम मोस्ट जो है, कम से कम, जघन्य से जघन्य जो ज्ञान का उघाड़ है शुद्ध ज्ञान का, उसका नाम है पर्याय। उसमें कुछ अंशों की वृद्धि होते 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 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते 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 अनंत उसके गुणा करेंगे तब जाके अक्षर नाम का ज्ञान होता है। बीच वाले भेदों को कहते पर्याय समास। पर्याय वाला जघन्य ज्ञान, उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ऐसे उसमें षट्स्थान पतित वृद्धि के भी असंख्यात लोक स्थान होते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके अनंत गुणा कर दो हम अपने समझने के लिए। तो बीच वाले सभी भेदों को हम कहेंगे पर्याय समास, और वो वाला जो है उसको कहेंगे अक्षर। वैसे वो पर्याय, फिर पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, फिर उसका पद, पद समास वगैरह वगैरह, आगे बहुत सारे भेद हैं, वो बात आगे आएगी श्रुत ज्ञान के प्रकरण में। तो इसको क्या कहते हैं, अक्षर का अनंत वा भाग ज्ञान, यानी जिस दूसरी भाषा में पर्याय नाम का ज्ञान नित्य उद्घाटित, यानी हमेशा वो उतना उघाड़ तो होगा ही होगा किसी भी जीव को, मिनिमम ये है ना, तो इतना उघाड़ नित्य उद्घाटित अर्थात आवरण रहित रहता है, उसका नाम है ये दूसरी भाषा में ये जो पर्याय ज्ञान है। पर्याय नाम का ज्ञान हो, ज्ञान की पर्याय की बात नहीं है, पर्याय कहो या अक्षर का अनंत वा भाग को एक ही बात, ये जो है उसको कहते हैं निरावरण ज्ञान है, उसका आवरण कभी नहीं पाया जाता। यानी उसका आवरण नाम का कर्म तो है परंतु उसका उदय कभी नहीं होगा, यानी इतना ज्ञान तो हमेशा उघाड़ रूप रहेगा ही किसी भी जीव को। निगोद जीव में तो है ही, तो हमें भी वो तो मिनिमम मोस्ट वो उसकी लेवल है ना, अभी किसी के पास एक रुपया है तो करोड़पति के पास एक रुपया है कि नहीं है, होगा ना, वो तो मिनिमम, हमने वहां से तो गिनती चालू की। तो वैसे ये पर्याय नाम का जो निरावरण ज्ञान है वो सभी जीवों में उतना होगा। इस सूत्र के अनुकूल होने से सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध है। यानी वो जो मान रहा था कि लक्षण का कभी नाश नहीं होता तो सभी जीवों में ज्ञान पाया जाएगा, तो ज्ञान होता ही है और उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। बाकी बात हम कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका।